അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ മൻ കാന നബിയ്യൻ വആദമു ബൈനൽ മായ് വത്തീൻ വഅലാ ആലിഹി വഅസ്ഹാബിഹി അജ്മാഈൻ അമ്മാ ബഅദ് ഫഔസു ബില്ലാഹി മിനശ്ശൈത്വാനിർ റജീം ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം ഇന്നല്ലാഹു വമലായികതഹു യുസല്ലൂന അലാ നബി يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد صلاه دائمه بدوام الملك الحي القيوم محبوب المشايخ مقدم زاده سيد محبوب اشرف جیلانی دامت برکات ملالیا صاحبزادہ سید آراف اشرف جیلانی دامت برکاتہم لالیہ استاد العلماء حضرت علامہ فضل الرحمن بندیالوی اشرفی دامت برکاتہم لالیہ و حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج کی یہ مبارک اور مقدس تقریب دعائے حفظ البحر کے چلے کی اختتامی تقریب ہے اور اس کی تکمیل پر ہر سال کی طرح اس سال بھی منعقد ہو رہی ہے۔ میں سب سے پہلے ان تمام مریدین معتقدین اور متوسلین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے کامیابی کے ساتھ یہ چلہ مکمل کیا، لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ اس کی تکمیل میں یا دعا کے پڑھنے میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں، کوئی کارنامہ نہیں، یہ محض اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ کرم اور ہمارے پیر و مرشد اشرف المشائخ حضرت ابو محمد شاہ سید احمد اشرف اشرفی الجیلانی نور اللہ مرقدہ کی نگاہ کرم اور روحانی تصرفات ہیں جس کی بنا پر یہ امر ممکن ہوا کہ ہم نے اور آپ نے یہ چلہ مکمل کیا۔ ورنہ آپ دیکھتے ہیں کہ آج کے اس دور میں چلہ کشی تو بالکل مفقود ہو چکی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بعض خانقاہیں ایسی ہوں کہ جہاں پر یہ سلسلہ جاری ہو، لیکن الحمدللہ سلسلہ اشرفیہ کی تمام خانقاہوں میں جو مختلف ممالک میں ہیں اور خصوصاً پاکستان میں یہ سلسلہ اشرفیہ کا سب سے بڑا مرکز درگاہ عالیہ اشرفیہ ہے جہاں یہ سلسلہ الحمدللہ جاری ہے، اور اس کو سب سے پہلے ہمارے پیر و مرشد اشرف المشائخ رحمۃ اللہ علیہ نے جاری کیا۔ ابتدا میں چند افراد تھے، پھر سلسلہ بڑھتا رہا اور اب تعداد سینکڑوں تک پہنچ چکی۔ نہ صرف یہ کہ پاکستان کے مختلف شہروں میں بلکہ بیرونی ممالک یعنی ہالینڈ، انگلینڈ، موریشس، ساؤتھ افریقہ، دبئی اور سعودی عرب، جہاں جہاں بھی سلسلے سے تعلق رکھنے والے مریدین موجود ہیں، ان سب نے فون کے ذریعے، واٹس اپ، ای میل اور دیگر ذرائع سے ہم سے اجازت لی، اس کا طریقہ معلوم کیا اور الحمدللہ انہوں نے اپنے اپنے مقامات پر یہ چلہ کیا۔ اس مرتبہ بہت سے افراد نے اپنے نام نہیں لکھوائے، جس کی وجہ سے ہم مکمل تعداد آپ کو نہیں بتا سکتے کہ اس مرتبہ کتنے حضرات نے چلہ کیا۔ حالانکہ ہم نے ان کو یہ بتایا تھا کہ بلال اشرفی کے پاس اپنے نام ضرور لکھوا دیں۔ بہرحال جن حضرات نے بھی کیا اور پابندی کے ساتھ کیا، اللہ تبارک و تعالی ان کے اس چلے کو قبول فرمائے۔ اس کے علاوہ ہم نے اللہ الصمد کا چلہ بھی لوگوں کو بتایا، اور اس چلے میں پرہیز نہیں تھا، یعنی اس میں تو انڈا، مچھلی اور گائے کے گوشت کا پرہیز دعائے حفظ البحر کے چلے میں، لیکن اللہ الصمد کے چلے میں پرہیز نہیں تھا۔ اس وجہ سے بہت سے لوگوں نے اسی چلے کو ترجیح دی جس میں پرہیز نہ ہو۔ اب پتہ نہیں وہ پرہیزگار بننا نہیں چاہتے، تو بہرحال ہماری کوشش تو یہ تھی کہ ان کو پرہیزگار بنا دیا جائے، لیکن جب انہوں نے اجازت لی کہ نہیں جی پرہیز کرنا مشکل ہے، تو ہم نے کہا ٹھیک ہے، سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے۔ अगर वो नहीं तो कम से कम ये करें तो सही। देखिए इंसान को इन तमाम चीजों से बचाकर अल्लाह की राह पर लगा देना ये बहुत बड़ा काम है, और ये बुजुर्गान दीन ही की निगाह करम है कि जिससे ये हो सकता है। वरना आप देखें कि आजकल ये चिल्ला कशी बिल्कुल मफकूद हो चुकी है। हम बुजुर्गान दीन के अहवाल में, उनकी सीरत में, उनके हालात जिंदगी में पढ़ते थे किस किस तरह उन्होंने चिल्ला किया। 40-40 दिन उन्होंने मुसलसल रोजे रखे और तर्क हैवाना जलाली और जमाली के साथ, नमक के साथ रोजा रखा, नमक के साथ इफ्तार किया, बहुत सख्तियां की सिर्फ नफ्स खुशी करने की वजह से। और यहां पर तो इतनी छूट दी गई कि आप इन तीन चीजों के अलावा दीगर चीजें आप खा सकते हैं। कहते नहीं कि अंडा नहीं छोड़ सकते, अंडा छोड़ना मुश्किल है, 40 दिन तक अंडा छोड़ना बड़ा मुश्किल है। तो अब ये नहीं पता कि अगर सिर्फ 40 दिन आप इन तीन चीजों का परहेज करेंगे तो इसके अलावा पूरे साल रब आपको कितनी नेमतें खिलाएगा इन 40 दिन परहेज की वजह से। लेकिन बहरहाल अपना अपना ख्याल है, और बहुत से ऐसे भी हैं जो इस्तेकामत के साथ इस पर डटे रहे और उन्होंने चिल्ला किया, और इंशाल्लाह आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा। दुआएं जुल्बहर एक रूहानी तोहफा है जो नबी पाक अलैहिस्सलाम की तरफ से बराह रास्त हजरत शेख अबुल हसन अली शाजली रहमतुल्लाह अलैह को अता हुआ। उसकी तफसील में जाने का वक्त नहीं, तमाम हजरात को मालूम है कि हजरत शेख सफर कर रहे थे हज के लिए। फरमाया मुझे हज का हुक्म हुआ है, बहरी जहाज में सवार हुए, मुरीदीन मुतकिदीन आपके साथ थे, बातें मुखालिफ चली, जहाज आगे बढ़ न सका, वहीं रुक गया, वक्त गुजर गया और इतना कम टाइम रह गया कि जद्दा तक पहुंचना नामुमकिन था। जो मुखालिफीन थे मोतरजीन, उन्होंने इतराज करना शुरू किया कि ये तो कहते हैं कि मुझे हुक्म मिला है और अब इतना वक्त नहीं कि वहां पहुंच सकें। उनके ताने तिशने इतराजा सुनकर हजरत के कल्ब मुबारक को तकलीफ हुई, लेकिन आपने कुछ कहा नहीं, खामोश रहे। उसी कैफियत में आप पर एक कैफियत तारी हुई, नींद का गलबा हुआ और ख्वाब में नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज्यारत हुई। सरकार ने फरमाया अबुल हसन परेशान ना हो, हम एक दुआ तुम्हें तालीम करते हैं, ये पढ़ो और अपने मुरीदीन को याद कराओ और फिर देखो रब की रहमत का करिश्मा क्या है। जब आप बेदार हुए, दुआ हिजुल बहर आप पढ़ रहे थे, आपने मुरीदीन को ये याद कराई और कहा ये पढ़ना शुरू करो। सब ने पढ़ना शुरू किया, बादे मवाफिक चली और इतनी तेज हवा चली कि वक्त से पहले आप पहुंच गए। ये देखकर उस जो जहाज था उसका जो कप्तान था वो ईसाई था और उसके दो नौजवान बेटे भी साथ थे। उसके दोनों बेटे मुसलमान हो गए लेकिन वो मुसलमान नहीं हुआ। जब रात हुई, ख्वाब में देखा कि जन्नत है, लोग जन्नत में दाखिल हो रहे हैं, उसके बेटे भी दाखिल हो रहे हैं, तो इसने सोचा मैं भी दाखिल हो जाऊं। तो दरबान ने रोक दिया, तुम नहीं जा सकते। क्यों? कहा ये मुसलमानों के लिए है, ये गैर मुस्लिमों के लिए नहीं है। सुबह उठकर उसने भी आपकी खिदमत में हाजिर होकर कलमा पढ़ा और उसी वक्त दार इस्लाम में दाखिल हो गया। हजरत शेख अबुल हसन अली शाजली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने इस दुआ के अल्फाज खुद नहीं तराशे, मैंने एक एक लफ्ज दहने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लिया। अब आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि ये कितनी मकबूल और कितनी मुकद्दस और कितनी बाबरकत दुआ। फिर आपने इसको अपने तक महदूद नहीं रखा बल्कि इसको आम कर दिया। न सिर्फ ये कि सिलसिले शाजलिया बल्कि कादरिया, चिश्तिया, नक्शबंदिया, सोरवर्दिया तमाम बुजुर्गों ने इस दुआ को न सिर्फ अपने मामूलात में रखा बल्कि इसको आम कर दिया। सिलसिला शादलिया से ताल्लुक रखने वाले बुजुर्गों में शेख मुहक्किक हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी नबर अल्लाह मरकदो और उनके उस्ताद हजरत शेख अली मुत्तकी मुहद्दिस मदनी कुद्दस सिर्रहु और हजरत शेख इज़्ज़ुद्दीन मुहद्दिस कुद्दस सिर्रहु हजरत शेख मोहम्मद बिन सुलेमान जजूली साहिब दलाइलुल खैरात, वो भी सिलसिले शाज़लिया से ताल्लुक रखते हैं, और हजरत इमाम अब्दुल वहाब शारानी कुद्दस सिर्रहु, ये तमाम वो मशाइख हैं जो सिलसिले शाज़लिया से ताल्लुक रखते हैं। ये खुद भी इस दुआ को अपने विर्द में शामिल रखते थे और आगे भी उन्होंने इस दुआ को आम कर दिया। इसीलिए ताकि इसका फैज पूरी दुनिया में फैल जाए। अल्हम्दुलिल्लाह 800 या 900 साल हो चुके हैं, ये दुआ तमाम सलासिल के मशाइख के विर्द में है और इंशाअल्लाह रहेगी। हमारे सिलसिले अशरफिया में कुतुब रब्बानी हजरत अबू मखदूम शाह सैयद मोहम्मद ताहिर अशरफ अल अशरफी अल जिलानी नव्वर अल्लाह मरकदहू, मुहद्दिस आज़म हिंद अल्लामा सैयद मोहम्मद मुहद्दिस कचौचवी नव्वर अल्लाह मरकदहू, हम शबीए गौसुल आज़म आला हजरत शाह अली हुसैन अशरफी मियाँ कुद्दस सिर्रहू, और इसी तरह दीगर मशाइख तरीकत ने इस दुआ को न सिर्फ खुद पढ़ा बल्कि इसको आम कर दिया। और हमारे पीर मुर्शिद अशरफुल मशाइख अबू मोहम्मद शाह सैयद अहमद अशरफ अशरफी अल जिलानी नव्वर अल्लाह मरकदहू ने खुसूसन पाकिस्तान में उन्हीं की वजह से इस दुआ को फरोग हासिल हुआ, और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह दीगर सलासिल के लोग भी इसको पढ़ रहे हैं, लेकिन हजरत ने बाकायदा इसकी तालीम अपने मुरीदीन को दी, इसके चिल्ले का तरीका बताया, और आखिरी दिन जैसे कि आज का दिन है हर साल वो तमाम मकामी अफराद दरगाह आलिया शफिया में हाजिर होकर इफ्तार भी करते हैं और उसके बाद खाना भी तनावुल करते हैं। कहने का मकसद ये है कि इस दुआ को जो आप लोग पढ़ रहे हैं पाबंदी के साथ पढ़ें, इस्तेकामत के साथ पढ़ें, और इसमें जो कुछ इशारात हों, जो कुछ कैफियात तारी हों, वो सिर्फ और सिर्फ अपने शेख को आगाह करें। यहाँ पर कैफियत ये है, देखिए तसव्वुफ बड़ी नाजुक चीज है, इसमें राज है। अगर कभी कोई कैफियत तारी हो, कोई ख्वाब आप देखें, या होने वाली चीज पहले से पता चल जाए, जब आदमी आगे बढ़ता है ना, मनाजिले सुलूक तय करता है, दरजात मरातिब आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता है, तो होने वाले वाकयात पहले से पता चल जाते हैं। कोई हादसा होना है, कोई वाकया होना है, कोई चीज होनी है, पहले से आपको इंडिकेशन हो गया, इंतबाह कर दिया गया कि देखो ये होने वाला है, या कोई खुशी मिलने वाली है तो आपको पता चल गया। अब वही वक्त होता है अपने आप को संभालने का। अगर कोई ख्वाब नजर आया कोई चीज, आपने लोगों में बैठ के कहा हाँ जी मुझे तो आज ये नजर आ गया, मुझे तो आज ये चीज पता चल गई, आप समझें कि उसी वक्त वो चीज छिन जाएगी, फिर दोबारा वो कैफियत नहीं होगी। जो कुछ आप देखें, जो कुछ कैफियत तारी हो, जो कुछ वारदात कल्बी जिसे कहा जाता है तरीकत की जबान में, दिल पर जो कैफियत हो, सिर्फ अपने शेख से आगाह करें, फिर वो आपको बताएगा कि आगे क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या चीज गलत है, क्या सही है। आप देखते ना गौसे आजम के सर पर नूर की चादर तन गई, आवाज आई अब्दुल कादर हर हराम चीज तुम पर हलाल कर दी, नमाज माफ कर दी, फिर आपने फरमाया ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयिल अज़ीम, ये शैतान है जो मुझे बहकारा, वो नूर की चादर हट गई और शैतान मकरूह सूरत में आया और कहता है अब्दुल कादर तेरे इल्म ने तुझे बचा लिया वरना मैं तो तुझे गुमराह कर देता। फरमाया इल्म ने नहीं बचाया, मेरे खुदा के फजल ने मुझे बचा। पता चला हिदायत पर रहने के लिए इल्म काफी नहीं, खुदा का फजल जरूरी है, रसूलुल्लाह की निगाह करम जरूरी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वरना शैतान से बड़ा कौन आलिम था। बहरहाल कहने का मकसद यह है कि अगर उस चीज को जाहिर कर दिया जाए तो फिर वो चीज छिन जाती, और अगर आप राज को राज रखें फिर वो चीज आगे बढ़ती, फिर नई नई चीजें आपको नजर आती। मेरे वालिद गिरामी अशरफुल मशाइख रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि मैंने अपने वालिद गिरामी यानी दादा हुजूर क़िबला से हजरत कुतुब रब्बानी से कहा कि बुजुर्गों की जियारत करना चाहता हूं, फरमाया आज ही कर लो, आज रात में कर लो। अच्छा रात हुई, रात को जियारत हुई और सुबह वालिद गिरामी की खिदमत में पहुंचे, अभी ख्वाब बताया नहीं है, उन्होंने फरमाया बेटा तुमने कल रात जिनकी जियारत की थी उनका ये नाम है। आप देख ख्वाब जब तक बताया ना जाए तो ताबीर कैसी, लेकिन रूह का रूह से ताल्लुक हो गया, कल्ब से कल्ब का ताल्लुक हो गया। अब आप कहेंगे जी हमें भी करा दे, होता है ना जी हमें भी करा दे, पहले कल्ब भी तो साफ हो, उधर तो उधर भी कल्ब साफ था इधर भी कल्ब साफ था, वो भी वली थे ये भी वली थे, दोनों रूहानियत का मरकज, तो उन्होंने कहा आज ही कर लो, रोजाना एक बुजुर्ग की ज्यारत होती थी और दूसरे दिन हजरत कुतुब रब्बानी उसकी ताबीर बताते थे, जिनकी तुमने ज्यारत की उनका ये नाम, और ये भी बताया उनका मजार फला मकाम पर। और खुद हजरत शेख अबुल हसन अली शादली रहमतुल्लाह अलैह की भी ज्यारत की उन्होंने। आखिरी दिन जब चिल्ला मुकम्मल हुआ उस वक्त फरमाया कि आज तुम्हें हजरत शेख शादली रहमतुल्लाह अलैह की ज्यारत होगी। तो वालिद गिरामी फरमाते कि मैं सो गया, मैंने ख्वाब में देखा कि वालिद साहब तशरीफ लाए और मेरा हाथ पकड़कर कहा चलो। मैंने चलना शुरू कर दिया, एक मैदान है, चले जा रहे, सामने किला नुमा इमारत है, उस पर बहुत बड़ा दरवाजा है, एक दरबान खड़ा है, उसके हाथ में डंडा है और इस तरह क्रॉस में दो खड़े हैं और ऐसे ताकि कोई जा ना सके। कहते हम पहुंचे, उन्होंने ऐसे रास्ता दे दिया, अंदर चले गए। तो मैंने कहा कि मुझे वजू करना है, तो हजरत कुतुब रब्बानी ने कहा कर लो वजू। कहने एक साइड में मैंने देखा वजू खाना है, मैंने वजू किया, फिर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और लेकर चले। पूरी मस्जिद बुजुर्गान दीन से भरी हुई, सब के सब सफेद लिबास में, सफेद अमामे में, और सबके चेहरे नूर से चमक रहे। फरमाते मुझे पकड़कर सबके दरमियान से आगे लेके जा रहे हैं। जाते जाते मेहराब में पहुंचे तो एक नूरानी सूरत बुजुर्ग, सर पर सफेद अमामा और उनका चेहरा चांद की तरह चमक रहा, गोया शुआएं निकल रही। और उन्होंने हजरत अशरफुल मशाइख फरमाते हैं कुतुब रब्बानी ने मुझे जाकर उनके कदमों में डाल दिया और कहा ये आपका गुलाम है, आप इसे इसका हिस्सा दे दीजिए। और मुझसे कहा ये हैं शेख अबुल हसन अली शादली रहमतुल्लाह। फरमाते मैंने उनकी जियारत भी की, उनकी कदम बोसी भी की, फिर उन्होंने मुझे उठाया, उनके सामने जलेबियों का एक थाल रखा और जलेबी उठाकर मुझे खिलाना शुरू कर। कहते एक खिलाई, दूसरी खिलाई, तीसरी खिलाई, इतना खिलाया कि मेरा पेट भर गया और मुझे महसूस हुआ कि मैं बिल्कुल शिकमसेर हो गया। उसके बाद उनको अंदाजा हो गया कि ये मजीद नहीं खा सकते। कहा बेटा अपना दामन फैलाओ। फरमाते मैंने अपना कुर्ता ऐसे, दामन ऐसे पकड़ लिया, उन्होंने जलेबियां उसमें डालना शुरू कर, उठा के डाली, फिर डाली, इतनी डाली कि ऊपर तक भर गया। और उसके बाद कहा जाओ, दुआएं इज़्ज़ुल बहर का फैज तुम्हें दे दिया है, अब इसे लुटाते रहो। फरमाते मैं फिर इस तरह उठा, कुर्ता मैं पकड़ा हुआ हूँ उसके दामन और उसमें जलेबियां भरी हुई हैं, और मैं पीछे मुड़ के जब जा रहा हूँ तो जितने भी वहां बैठे थे सब मुझे मुबारकबाद दे रहे थे और सुभान अल्लाह कह रहे, और सब के सब सफेद अमामे, सफेद लिबास में थे और उनके चेहरे भी चमक रहे। अब फरमाते मैंने सोचा कि जब मैं इस तरह घर जाऊंगा तो लोग हंसेंगे कि ये जलेबी दामन में भर के ले आए, जलेबी दामन में भर के ले आए। कहते मैं इसी तरह चलते चलते अचानक मैं किसी चीज से टकराया तो मेरी आंख खुल गई। किससे टकराया? मैं अपने कमरे से उठकर सहन में आया और जो सुतून था उससे मैं टकराया, तब मेरी आंख खुली और पीछे से हजरत कुतुब रब्बानी तशरीफ लाए और मुझे पकड़ लिया, बस ठहर जाओ गिर जाओगे। कहने उस वक्त तक मिठास मेरे मुंह में मौजूद थी, उस वक्त तक मिठास मौजूद थी, ये है दुआए जुल बहर का फैज। और फिर फरमाया कि तुमने जिनकी जियारत की वो शेख अबुल हसन अली शादली रहमतुल्लाह। तो हजरत अशरफुल मशाइख ने पूरी जिंदगी में एक दिन भी इस दुआ की नागा नहीं, सेहत हो, बीमारी हो, सर्दी हो, गर्मी हो, खिजा हो, बहार हो, सफर हो, हजर हो, हर मकाम पर जब उनके वजीफे का वक्त हो जाता उसी वक्त पढ़ने के लिए बैठे। ये है इस्तेकामत अल मामूलात। हम तो एक दिन पढ़े तो दूसरे दिन छोड़ दे, सर में दर्द हुआ तो छोड़ दिया, बुखार हुआ तो छोड़ दिया, सफर में जा रहे हैं तो छोड़ दिया। इस्तेकामत होनी चाहिए। कुरान ने कहा सुम्मस्तकामू, और जब सुम्मस्तकामू तो फिर ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, फिर मलाइका का नुज़ूल होता है, फिर रहमत बरकत नाजिल होती। तो आप हजरात के लिए ये हिदायत है कि जो कोई भी दुआए ज़ुल्बैर पढ़ रहा है पूरे यकीन के साथ पढ़िए, पाबंदी के साथ पढ़िए, और ये सोच कर पढ़ें कि हजरत शेख शादली रहमतुल्लाह अलैह का फैज हमें हासिल हो रहा और इंशाल्लाह उनका फैज हासिल होगा। और उसके बाद दुआ भी करें कि शेख हमें अपनी ज्यारत से मुशर्रफ कर, उनकी करम होगा तो ज्यारत हो जाएगी। लेकिन कल्ब के साफ होने की जरूरत है, कल्ब के साफ होने की जरूरत। एक चीज पर खाक पड़ जाए, मसलन आईना है उस पर खाक पड़ जाए, आप रुमाल लेकर झाड़े साफ हो जाए। लेकिन अगर उस पर तेल गिर जाए और फिर खाक पड़ जाए तब खाली कपड़े से साफ नहीं होगा ना, या खाली साबुन मल दिया, उसको रगड़ने की जरूरत है। रगड़ाई होगी फिर घिसाई होगी फिर चमक पैदा हो, बात समझ रहे हो? अभी रगड़ाई नहीं हुई, घिसाई भी नहीं हुई, तो चमक कहां से पैदा होगी? कहते नहीं जी हमें ज्यारत हो जाए, पहले तो रगड़ाई तो हो जाए, घिसाई तो हो जाए, फिर चमक पैदा होगी, तो यहीं बैठे बैठे मदीने वाले के जलवे नजर आ जाए। असल चीज ये है, कल्ब का साफ होना जरूरी। लिकुल्ले शैइन सिकालतुन व सिकालतुल कल्ब ज़िक्रुल्लाह, हर शय की सफाई का एक आला है और कल्ब के सफाई के लिए अल्लाह का जिक्र है। उसके इसकी इजाजत भी हम आपको दे चुके हैं, जिक्र बिल जहर या जिक्र खफी, जो चाहे वो कर सकता है। तो जितना भी आप जिक्र करेंगे कल्ब उतना ही पाक और साफ होगा। और हदीस शरीफ के मुताबिक अस्तगफार जो है, सरकार ने फरमाया ये तुम्हारे दिलों की पॉलिश है, जितना कसरत से अस्तगफार पढ़ोगे दिल उतना रोशन, उतना पाकीजा, उतना चमकदार हो जाएगा। तो अल्लाह के इन वलियों ने अपने कल्ब को पाक और साफ कर लिया। और कल्ब को पाक और साफ होने का करने का तरीका यह है कि पहले अपनी जबान को पाक और साफ कर लिया था झूठ से, खीबत से, चुगली से, किसी की दिल आजारी से, फहज गोई से अपनी जबान को रोक लो, क्योंकि दिल और जबान का रिश्ता बड़ा मजबूत है। दिल और जबान का रिश्ता, झूठ जबान बोलती है सिया दिल होता है, गीबत जबान करती है सिया दिल होता है, फहज गोई जबान करती है सिया दिल होता है, नाते नबी जबान पढ़ती है रोशन दिल होता है, दुरूद जबान पढ़ती है रोशन दिल होता है, अल्लाह का जिक्र जबान करती है रोशन दिल होता है। तो अगर कल्ब को रोशन करना है तो पहले अपनी जबान को तमाम चीजों से पाक और साफ कर लो, और फिर उसे हमा वक्त अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र में मशगूल रखो, मसरूफ रखो, फिर देखो कल्ब साफ हो जाएगा। और जब कल्ब साफ हो जाएगा तो आप साहिब मजार की भी जियारत कर सकते हैं और जितने बुजुर्ग हैं सबकी जियारत कर सकते हैं। उनके लिए मुश्किल नहीं, मुश्किल हमारे लिए। आप देखते हैं ना, आप ये जितने लोग बैठे हैं सारे फेसबुक इस्तेमाल करते हैं ना, शायद ही कोई हो जो नहीं करता हो। मेरे ख्याल से मैं ही हूं जो मैं नहीं करता, इसलिए कि मैं रियल फेस देखता हूँ, फेसबुक नहीं देखता। फेसबुक पे तो हर कोई अपना जरा शानदार लगाते हैं ना, ताकि लोग कहें कि जी लोग हमें ऐड करें, तस्वीर देखो तो भाई बड़ा खूबसूरत आदमी, चलो भाई इसको ऐड करो, और तस्वीर के अलावा देखो तो कहो इन्ना लिल्लाह या फिर पढ़ो अस्तगफिरुल्लाह, यही चीज है ना। तो जिस तरह ये एक फेसबुक है, इसी तरह एक रूहानी फेसबुक भी है, सारे बुजुर्गान दीन उसमें मौजूद हैं। और फेसबुक में आप देख सकते हैं कि कौन ऑनलाइन है कौन नहीं है, ये है ना, पता चल जाता है। अच्छा जी फलां साहब ऑनलाइन नहीं है, ये भी सो रहे होंगे, फलां जो है ये मौजूद है, चलो इनसे बात कर लो, इनसे गुफ्तगू कर लो। लेकिन रूहानी फेसबुक में हर वक्त हर बुजुर्ग ऑनलाइन है, यहाँ है ही नहीं कि कोई ऑनलाइन ना हो, ऑफलाइन हो, जब चाहो गौसे आजम ऑनलाइन है, उधर गरीब नवाज ऑनलाइन है, उधर मखदूम समनानी ऑनलाइन है, इधर कुतुब रब्बानी ऑनलाइन। लेकिन ताल्लुक होना चाहिए, तार से तार मिल जाएगा तब रोशनी पैदा होगी, और जब तक तार से तार नहीं मिलेगा रोशनी पैदा नहीं होगी। तो उस रोशनी पैदा करने के लिए जिक्रुल्लाह करना है, जिक्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करना है। और बुजुर्गान दीन के ये मामूलात जो हमने आपको इजाजत दी है, दुआ इफ्तुल बहर, अल्लाहु समद, दलाइलुल खैरात, जितनी भी चीजें जो भी पढ़ रहा है इस्तेकामत के साथ पढ़े। यहाँ तो एक दिन पढ़ा, दो दिन छोड़ दिया, फिर दो दिन पढ़ा, चार दिन छोड़ दिया, इस तरह फिर कोई फायदा नहीं। इस्तेकामत के साथ आप पढ़ेंगे, पानी की बूंद पत्थर पर मुसलसल गिरती है तो गड़ा पैदा कर देती, होता है ना। तो इसलिए मुसलसल पढ़ें, पाबंदी के साथ पढ़ें, तवातुर के साथ पढ़ें, फिर आप देखें उसका फैज होगा इंशाअल्लाह ताला। अब क्योंकि वक्त मुख्तसर है, बस मैं अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम की जानिब ले जा रहा हूं, और वो ये है कि सबसे पहले नमाजों की पाबंदी, उसके बाद दुआएं इज्जुल बहर या जो भी आपका मामूल है उसकी पाबंदी, फिर जबान की हिफाजत, फिर रिस्क हलाल और सिदक मकाल, ये दो चीजें। हजरत जुनैद बगदादी रजी अल्लाह ताला अपने मुरीदीन के साथ गुजर रहे, सामने से हजरत बहलूल दाना आ रहे। इन्होंने मुरीदीन से कहा ठहर जाओ, हजरत आ रहे, मैं मुलाकात कर लूं। उन्होंने कहा हजरत आप तो खुद बुजुर्ग हैं, आपके इतने तलामिजा, इतने मुरीदीन, इतने मुतकिदीन, आप इनसे मिलके क्या करेंगे। कहा नहीं, तुम नहीं जानते इनका क्या मकाम है। सबको मुरीदीन को एक तरफ छोड़ा, जाकर हजरत बहलूल दाना रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात की और सलाम कलाम हुआ। कहा हुजूर मुझे नसीहत कीजिए। उन्होंने कहा तुम्हें नसीहत की जरूरत नहीं, नहीं नहीं आप मुझे कोई नसीहत कीजिए। उनका अच्छा एक सवाल का जवाब दो, क्या? कहा खाने के आदाब क्या हैं ये बताओ। हजरत बहलूल दाना पूछ रहे हैं हजरत जुनैद बगदादी रजी अल्लाह तआला अन्हु, खाने के आदाब क्या हैं। कहा हुजूर खाने का अदब ये है कि पहले हाथ धोया जाए, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ी जाए, फिर दाएं हाथ से लकमा उठाकर खाया जाए। उन्होंने कहा अफसोस, मैं तो तुम्हें बहुत बड़ा आलिम समझता था, ये क्या क्या आगे चले, अब इनके समझ में नहीं आया, पीछे पीछे हुजूर बताइए। कहा नहीं नहीं मुझे बड़ा अफसोस हुआ तुम्हारे जवाब, मैं तो समझता तुम बहुत बड़े आलिम हो। अरे बता तो दीजिए मसला क्या है, आदाब तो यही है ना, अगर कोई आपसे पूछे तो आप यही कहेंगे कि हाथ धोकर बिस्मिल्लाह पढ़ के दाएं हाथ से लुकमा उठाए खाए। कहा हुजूर आप बता दीजिए। फरमाया सुनो, खाने का अदब ये है कि लुकमा हलाल का होना चाहिए, ये है खाने का अदब, लुकमा हलाल का होना चाहिए। अगर हराम का हुआ तो क्या है, तुम हाथ दो या बिस्मिल्लाह पढ़ो, कुछ भी करो, कोई फायदा नहीं। बात समझ में आई? अगर इबादत में खुशू और खुजू पैदा करना है तो रिस्क हलाल हो, सिदक मकाल हो, ये चीज याद रखिए। 1 करोड़ रुपए या अरब रुपए आपको हराम के मिल रहे हैं उसे लात मार दो, और 1 रुपया हलाल का मिल रहा है उसे ले लो, उसी में अमन है, उसी में आफियत है, उसी में निजात है। तो ये तमाम चीजें अपने पेश नजर रखें, कोशिश करें कि आपका रिजक जो है वो हलाल का होना चाहिए, हराम की किसी तरह उसमें आमिदिश ना हो, ना सूद की आमिदिश हो, ना झूठ की हो, ना और किसी चीज की हो, साफ सुथरा रिजक आप खाएं, फिर इबादत में खुशू खुजू भी पैदा होगा और कल्ब भी साफ होगा। कल्ब साफ होगा तो यहीं बैठे बैठे यार के जलवे नजर आ जाएंगे। बस आप लोगों के लिए हिदायत है, इसी पाबंदी के साथ पढ़ते रहें। आइए दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला जिन हजरात ने ये दुआ इज़्ज़ुल बहर पढ़ी है उसमें उन्हें कामयाबी अता फरमा, इसे कबूल फरमा। इलाहुल आलमीन इस पढ़ने में चिल्ले में किसी तरह की गलती हो अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में उसे माफ़ फरमा। हम सबको इस दुआ पर इस्तेकामत अता फरमा। शेख अबुल हसन अली शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह के रूहानी तसरुफात उनकी निगाह करम अता फरमा। हमारे पीर मुर्शिद अशरफुल मशाइख रहमतुल्लाह अलैह की और हजरत कुतुब रब्बानी की और दीगर बुजुर्गान सिलसिले अशरफिया हजरत मखदूम समनानी की निगाह करम अता फरमा, उनके रूहानी तसरुफात अता फरमा और हमें इस पर इस्तेकामत अता फरमा। इलाहुल आलमीन हमारे कल्ब को साफ कर दे, हमारे कल्ब को पाक कर दे, हमारी निगाह को, हमारी जबान को पाक और साफ कर दे। इलाहुल आलमीन हम सबको इस्लाम पर जिंदा रख और इस्लाम पर मौत अता फरमा। नबी पाक अलैहिस्सलाम की सच्ची मोहब्बत में जिंदा रहें और सरकार की सच्ची मोहब्बत में मौत अता फरमा। इन्नल्लाहु व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة دائمة بدوام الملك الحي القيوم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين।